प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 1 नवंबर 2016 के AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है वह विषय मैंने आप लोगों के बीच से ही लिया है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मेल आया था जो हमारी अपनी एकेडमी के रेगुलर यानी कि शायद किसी बैच फोर्थ या फिफ्थ बैच थर्ड या फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने अपने एक संकट की उसमें चर्चा की थी। उस संकट को ही आधार बनाकर मैं आप लोगों के साथ आज एक विचित्र किस्म के धर्म संकट के बारे में ही बातें करने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि यदि मैं उनके इस संकट को उठा रहा हूं, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि मेरे इस इश्यू का या जो बातें मैं अभी आपसे शेयर करूंगा उसका संबंध सिर्फ उसी एक ही संकट से है। इसे आप अपने जीवन के हर तरह के संकट पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आप अप्लाई करके देख ही सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम उनके संकट को समझते हैं। उनका संकट यह था कि चूंकि वो हमारे बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो जो स्टूडेंट यहां 15 दिन की क्लासेस अटेंड करते हैं, आप जानते हैं कि उन्हें फिर 50 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि लगभग एक साल तक हर सप्ताह एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उन्हें स्पेशल ऑडियो जो 30-35 मिनट का होता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है, वो उनके पास स्पेशली भेजा जाता है। वो सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज आप इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को अपने तक ही रखें, किसी दूसरे स्टूडेंट को न दें। उसके पीछे मित्रों एकेडमी का के दो उद्देश्य हैं। पहला तो निश्चित रूप से चूंकि आप यहां आए हैं, 15 दिन की आपने क्लासेस अटेंड की हैं, उसके लिए आपने एक निश्चित फीस दी है, तो ये उसका हिस्सा है, यानी कि इसकी कीमत आपने चुकाई है, ये पेमेंट आपने इसका दिया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो ये कि ये जो आपको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस दिया गया है, इसको तैयार करते समय इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा गया है कि आपने 15 दिन की क्लास अटेंड की है, यानी कि बहुत सी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं। आपका जो कैनवास है पहले से तैयार है, आपकी जानकारी की भूमिका पहले से रेडी है, उससे आगे की बात हम इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में करते हैं। इसलिए उनको यह भी बता दिया जाता है कि देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इसे मांगता भी है या आप अपनी तरफ से भी देते हैं, तो आप एकेडमी के साथ तो अन्याय करेंगे ही, अपने साथ भी आप अन्याय करेंगे कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो एकेडमी ने जो कहा है उसके आप विपरीत जा रहे हो, और तीसरा है कि जिस स्टूडेंट को आप दे रहे हैं उसका भी कोई बहुत फायदा आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहा है कि हाँ मैंने सुन लिया, मैं जान गया, मैं समझ गया, जबकि वो आधा अधूरा समझ पा रहा है, आधा अधूरा जान रहा है, क्योंकि 15 दिन की क्लासेस की बैकग्राउंड उसके पास नहीं है। और ये जो ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है, बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप 15 दिन की क्लास अटेंड कर चुके हैं। ये तो ठीक उसी तरह से है मित्रों, जैसे कि आप किसी एक टॉपिक पर 5वीं के स्टूडेंट को पढ़ाएं और उसी टॉपिक पर आप 10th के स्टूडेंट को पढ़ाएं। तो जब आप 10th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में यह बात तो रहती है कि भई ये 5th में भी इसको पढ़ चुका है, तब फिर आप उससे आगे की बात बताते हैं, आप सीधे सीधे 5th पर नहीं जाते हैं 10th को पढ़ाने के लिए। तो मित्रों, अब जो मेरे पास मेल आया था उसमें उनके सामने संकट यह था कि उनका एक बहुत अच्छा जो दोस्त है वो उससे अपने मित्र से स्पेशल ऑडियो गाइडेंस की डिमांड कर रहा है। बस कुल मिलाकर यह धर्म संकट है। अब इन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसे क्या करना चाहिए। अब मैं एक सैद्धांतिक बात पर आता हूं, या यूं कह लीजिए कि इस घटना के माध्यम से अब मैं जीवन की बात आपसे करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसी को हम कहते हैं धर्म संकट। यह संकट नहीं है, ये धर्म संकट है। धर्म संकट इसको किस लिए कहा गया है कि यदि वो ऑडियो दे देता है तो एकेडमी के प्रति अन्याय होता है और वो खुद के प्रति भी अन्याय करता है, क्योंकि उसने वचन दिया है कि हाँ ये ऐसा मैं करूंगा, यानी कि आरडीओ मैं किसी को नहीं दूंगा। तो अगर दे देता है तो ये दो के प्रति अन्याय होता है, और जो नहीं देता है तो उसको लगता है कि इस दोस्त से मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, या वो नाराज हो जाएगा, या मेरे प्रति कुछ नकारात्मक भाव आ जाएगा, मेरे को घमंडी समझने लगेगा, जो भी है हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसीलिए तो धर्म संकट है ना। देखिए, धर्म संकट का मतलब ये क्या करूं क्या नहीं करूं, इधर खाई है और उधर घाटी है, इधर जाता हूं तो उसमें गिरूंगा, उसमें उधर जाता हूं तो उसमें गिरूंगा, मतलब संकट दोनों ही तरफ से है, इसे ही कहते हैं धर्म संकट। दोस्तों, ये मजेदार बात यह है कि जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, इनफैक्ट वही एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई संकट नहीं होता है। सच मानिए तो कोई संकट नहीं होता है, क्योंकि जो धर्म है वो ऑलरेडी प्रमाणित है कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, संकट वहां तो आ सकता है जहां बताया न गया हो कि आपको करना क्या चाहिए, लेकिन जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है, लिखा गया है, वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप संकट में फंसे। तो ये जो दूसरी तरह का आप संकट लेकर आए हैं कि मेरी दोस्ती उसके साथ निभेगी कि नहीं निभेगी, रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, वो मुझसे नाराज हो जाएगा, ये तो आपने खड़ा किया है ना, ये आपने खड़ा किया है, ये आपने अपना एक नया धर्म गढ़ लिया है, एक व्यक्तिगत तौर पर चीजें बना ली हैं, और आप उसको भी बचाना चाह रहे हैं, इसको भी बचाना चाह रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन दोनों को बचा लें। पहली बात। दूसरी बात मित्रों, मैं यहां एक व्यावहारिक संकट की बात करूंगा। देखिए, जो उनका मित्र जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मांग रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मुझे भी अगर लगे कि मेरे दोस्त के पास ये चीज है जो मेरे काम की हो सकती है, तो मैं भी उससे मांगूंगा। अब ये मेरे दोस्त की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुझे सच्चाई से अवगत कराए। तो ये स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सच सच बताए, दोनों तीनों सच बता दे। पहला तो यह है कि एकेडमी ने देने से मना किया है, दूसरा यह है कि मैं इसलिए तुम्हारे देना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसको तुम बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। हालांकि वो कहेगा कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं समझ जाऊंगा और नहीं समझूंगा तो मैं लौटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, वह मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सारी दलीलें तो वो अपनी तरफ से देगा क्योंकि उसे चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं देनी है, उसको तो फ्री फोकट का है ना, जो भी मिल जाएगा, जो भी फायदा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसको ये सच्चाई मालूम नहीं है, तो आप उसे सच्चाई बताएं। तो याद रखिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है कि आप सामने वाले को सच्चाई बताएं। हां, सच्चाई जानने के बाद भी अगर वह आग्रह करता है तो फिर यही आपके चरित्र की दृढ़ता काम आती है कि आप चारित्रिक रूप से कितने दृढ़ हैं, अपने विचारों के, अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हैं। और मित्रों, जो अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं, जो अपने चरित्र की दृढ़ता में जीते हैं, सच पूछे तो उन्हीं की इमेज बनती है, जो छवि जिसे आप कहते हैं, जिन महापुरुषों के आज आप नाम लेते हैं, तो वो महापुरुष इस तरीके के नहीं है जो थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहे हैं। वे महापुरुष हैं जो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे हैं, उन्हें फिर इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा वो नाराज हो जाएगा, वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा ही, वो तो अपने ही केवल हित में सोच रहा है, लेकिन आप एक व्यापक हित में सोच रहे हैं, और व्यापक हित वाले ही लीडर बनते हैं, व्यापक हित वाले ही समाज को बदलते हैं, और सच पूछे तो व्यापक हित में सोचने वाले लोगों की ही समाज को जरूरत भी है, उन्हीं को समाज फॉलो भी करता है। और मुझे तो यह भी लगता है मित्रों कि ये सच्चाई बताने के बाद भी अगर कोई उसे नहीं समझ रहा है, तो मान करके चलिए कि वह आपका मित्र नहीं है, सच्चा मित्र तो नहीं है, वह स्वार्थ का मित्र है, वह हर चीज का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर कर रहा है कि आपसे उसे कितना फायदा हो सकता है। सच्चा मित्र तो वह होता है जो आपको जब आप धर्म संकट में पड़ गए हैं तो वहां से निकाले, न कि वह जो आपको धर्म संकट में डाले। दोस्तों, मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा, वो ये कि हो सकता है कि तात्कालिक रूप में आपको खुद भी इस बात से तकलीफ हो, और सामने वाले को तो तकलीफ होगी ही होगी। जिसने आपसे चीज चाही थी, आपने उसकी चाहना पूरी नहीं की, उसको तो तकलीफ होगी, वो आपके प्रति नाराज होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। हो सकता है कि कुछ समय के बाद जब उसमें समझदारी आ जाएगी तो वही व्यक्ति आपके इस एक्शन की, आपके इस निर्णय की तारीफ करेगा, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। देखिए, यदि आप उन्हें दे देते हैं तो याद रखिए कि इससे उनको फायदा तो पहुंच गया, लेकिन उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है, ये बात बैठ गई है कि नहीं, आप विश्वसनीय नहीं हैं। यदि आप एकेडमी के साथ धोखा कर सकते हैं तो किसी के साथ भी धोखा कर सकते। धोखा का मतलब है कि वचन देकर के उसे पूरा ना करना। मैं धोखे को उस सेंस में आप मत लीजिएगा कि अगर आप एकेडमी के साथ कर सकते हैं तो किसी दूसरे संस्था के साथ भी कर सकते हैं, यदि दूसरे संस्था के साथ भी कर सकते हैं तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि फिर वो आप उसके लिए भी विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके दिमाग, उससे अच्छा बनने के चक्कर में आप अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगा रहे हैं। और मित्रों, ये जो व्यक्तित्व का पोलापन है, पिलपिलापन है, सच पूछिए, हमें कहीं का नहीं रहने देता, हमें कहीं का नहीं छोड़ता। यह हमारे चरित्र का अंग बन जाता है, हमारे सोच का हिस्सा बन जाता है। फिर तो हम इतने टेम्परेरी डिसीजंस लेते हैं कि ठीक है, अभी क्या फायदा हो रहा है, अभी डिसीजन ले लो। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज मत पढ़ो यार, कल देखेंगे। कल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो पोलापन है ना, ये तो ढुलमुलपन है, क्योंकि सारी चीजें हमारी तात्कालिकता पर टिक गई हैं। अभी जिससे फायदा मिलता हो वो कर लो, बाद की बात में देखी जाएगी। तो दोस्तों, इससे हमारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं। डिसीजंस के लिए हमारे दिमाग में जो तर्क आएंगे वो बहुत ही टेम्परेरी किस्म के आने लगेंगे। और मान करके चलिए कि जब ऐसा होगा तो केवल यही नहीं, एक छोटी सी बात है ये, तो जिंदगी के जो दूसरे भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उनमें भी आप चूकने लगेंगे, क्योंकि अब आपका व्यक्तित्व चट्टानी नहीं रह गया है, वो रेतीला हो गया है, रेत की तरह हो गया है। तो दोस्तों, बस उस एक घटना के माध्यम से मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट में ये कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। और इसी के साथ ही आज का यह लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है। आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।